Perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का
लाहौरी स्टाइल नाश्ता मजेदार कढ़ाई मल्ट वॉटरिंग कबाब में सिजलिंग बारबेक्यू आइटम
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल
ताजा सब्जियां ली तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म जिथे तुसी ले सकदे हो निखरे पौधे मिट्टी गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाने लई कैलडन सब्जी फार्म ते आओ असी सवेरे 9 बजे तो शाम 8 बजे तक तुहाडी सेवा लई हाजिर हां 12050 एयरपोर्ट रोड कैलडन जां तुसी फोन करो 905-840-9000 905-840-9000
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
कोई बात सादा सी है हमारे पास दो गाड़ियां और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773
Tired of missing your favorite Indian shows? Introducing Fastway IPTV, your gateway to 11,000 plus channels and 150,000 plus movies and series, all in one box. Catch up TV, full HD streaming, VOD and regional channels. One-time payments, long-term peace of mind. Just $216 for 2-year subscription and free 4K IPTV box. Just $360 for 5-year subscription and free 4K IPTV box. Call now 866-692-4788 and bring home the ultimate South Asian entertainment experience. Free delivery all over Canada and US. Fastway IPTV. Entertainment your way.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमेटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 जा quicktrucklube.com QTL because we care
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ontario.ca/gopsw ਤੇ ਜਾਓ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman. अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ रूट केनाल वाइट टीथनिंग इम्प्लांट डेंटिस्ट्री डेंटल क्राउन्स विजडम टूथ रिमूवल क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स वॉक इन एंड इमरजेंसी एक्सेप्टिंग कैनेडा डेंटल केयर प्लान डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान 3465 लेटेनियम ड्राइव यूनिट 76 मिसिसागा फोन 905-820-0900 905-820-0900
बटाला सुपर मार्केट बटाला सुपर मार्केट हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिल
ਸਰੋਂ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਫੋਨ 416-264-3111
خوبصورت دانت باعتماد مسکراہٹ اور باعتماد گفتگو آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن فلنگ کراؤنز بریجز کلیننگ ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس فری کنسلٹیشن دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ 299-7466 جی سر ایک سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ فہیم شہزادہ میں ان کو کہا کرتی ہوتی ہوں میرے ساتھ فہیم ہے جب فہیم سے بات کرانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو لیگل بیسمنٹ ہے واٹ اٹ مینس آپ کو بتائیے کہ برامپٹن نے کمپلسری کر دی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیسمنٹ کو رینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی رجسٹر کرانا ہوگا آپ کی بیسمنٹ اگر لیگل ہوگی تو مسائل نہیں ہوں گے اگر لیگل نہیں ہوگی تو یقیناً اس کے فائنز بھی ہیں اور بعض اوقات ٹیننٹس جو ہیں وہ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ بھی اٹھایا کرتے ہیں آئی ہیو ون ہوم فار سیل دس از جیمز پاٹر اور بویرڈ کے انٹرسیکشن پہ اٹس اے بیوٹیفل ہوم آپ یقین کیجئے گا اوپر سے لے کے نیچے تک ایوری تھنگ از نیو ایکچولی یہ اونر نے یہ گھر خریدا تھا بلڈر سے آپ کو بتائیے یہی وہی 20 ایئرز پلس کا بنا ہوا علاقہ ہے 15 سے 30 سال کے عرصے میں یہ گھر آتا ہے تو دس از 2200 اسکوئر فٹ اپ اسٹیئرز ہے چار بیڈ روم اس گھر میں انہوں نے فیملی ایکسٹینڈ ہوئی انہوں نے ایک اور بڑا گھر لے لیا تو یہ گھر جو ہے پھر اس کو مکمل طور پہ اپ گریڈ کیا اپ گریڈ کیسے کیا انہوں نے کہ اس گھر کو پورا کا پورا اس کے فلورز چینج کیے اوپن کانسیپٹ دیا اس کو سائڈ انٹرنس جس کو سٹی اپروو کرتا ہے سٹی چیک کرتا ہے آگے اور لیگل دو بیڈ روم کی بیسمنٹ بھی یہاں پہ بنائی اس گھر میں آپ اس کو 2800 سے 3000 آسانی سے یہ رینٹ ہوگا بیکاز کھلے دو بڑے بیڈ روم ہیں بعض کو جب ہم دو بیڈ روم کہتے ہیں تو ایک بیڈ روم ہوتا ہے اور ایک ڈین ہوتا ہے دیز آر کھلے دو بیڈ رومس ہیں 2800 ڈالرز پر منتھ پہ آپ رینٹ اس کا مقصد ہے کہ یہ آپ کے گھر کا ٹھیک ٹھاک مارگیج کو کیری کر سکتا ہے پلس یوٹیلیٹیز کے ساتھ آپ اس گھر کو لے سکتے ہیں اس گھر میں پورا کا پورا جہاں جہاں ٹائلز ریکوائرڈ ہے جہاں جہاں یہ انجینئرڈ ہارڈ وڈ فلور اس گھر میں لگا کیبنٹس نئی ہیں اپلائنسز ایبسولیوٹلی نیو ہیں تو اگر آپ اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں یو گیو می اے کال اب یہ ساری بات فہیم شہزادے کو رکھ کے بات کرنے کی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مشکل ہیں حالانکہ اگر میں دیکھوں تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے بٹ انسرٹنٹی بڑھ گئی انسرٹنٹی کیسے بنی ٹیرفز کی وجہ سے سمجھ دیں کینیڈا کی بہت ساری جاب لاس بہت زیادہ ہوا اور ابھی کہتے ہیں کہ مزید جاب لاس جو ہے آن دا وے ہے تو وہ انسرٹنٹی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں نمبر آف پراپرٹیز بھی میکسیمم پہ آیا ہوا ہے یعنی یہ وہ تعداد ہے جو 1992 سے 1995 کے درمیان ہائیسٹ نمبر 31,000 سے لے کے 32,000 تک جو پراپرٹیز اس وقت مارکیٹ میں ہیں مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس گھر ہے میری بیسمنٹ آپ بیسمنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ سائیڈ انٹرنس نہیں ہے اس میں تو سائیڈ انٹرنس نکلوانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے لیگل بیسمنٹ بنائیے لیگل طریقے سے سائیڈ انٹرنس نکالیے جس میں سٹی سے باقاعدہ پرمٹ لینا اب پرمٹ لینا ان کی ذمہ داری ہوگی دے ول گیٹ پرمٹ فار یو بٹ آف کورس آپ سے آپ کی بیسمنٹ فہیم میرے ساتھ ہے فہیم السلام علیکم ہاؤ آر یو
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اچھا مجھے یہ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کی سروسز کیا ہیں یعنی لیگل بیسمنٹ ہے سائیڈ انٹرنس ہے واٹ ایلس
ہم جیسے آپ نے تو آدھے سے زیادہ انٹروڈکشن تو ویسے ہی دے دیا ہے کام کے سلسلے میں اور سروسز میں اور میں ایڈ اس میں اور کر دوں جیسے بہت سارے لوگ نیا گھر خریدتے ہیں اور ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ایڈیشنل واش روم اوپر ہو جائے یا جو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر دو واش روم والا جیسے اوپر دو واش روم ہیں اور وہ آپ کو گھر سستا مل جاتا ہے लेकिन अगर आप उसके अंदर एक और वॉशरूम अगर ऐड कर दें खरीदने के बाद में, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर एक नया वॉशरूम भी ऊपर बना सकते हैं, वो आपको उसकी कीमत से बहुत कम पड़ता है। और दूसरे किचन को अगर अपग्रेड करना है, हम किचन को भी पूरा अपग्रेड कर देते हैं, पूरी बिल्कुल ब्रांड न्यू किचन हो जाएगा। जैसे आपको 20 साल की तो कोई आपको उसके अंदर गारंटी होगी कि एक चीज भी नहीं हिलेगी, उसकी नई कैबिनेट वुड की कैबिनेट।
मैंने कौन सा किचन के दरवाजे के साथ लटक जाना है जो गिर जाएगा हाथों भी
भाई? इसलिए कि आप वक्त के साथ साथ देखें कि जो पुराने जो किचन होते हैं, पुराने किचन कितनी बार आप डोर्स उसके खोलते हैं बंद करते हैं, उसकी वजह से वो हिंजेस में इतनी वो नहीं होती है, क्योंकि वो अगर जैसे बिल्डर लगाता है तो बिल्डर बिल्कुल भूसे वाले
अनबाउंड चीजें लगाता है, बिल्कुल सही, कॉम्प्रोमाइज्ड,
तो वो जो है ना वो जल्दी खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक बार अगर आपने एक बार अगर खर्चा कर लिया किचन के ऊपर, तो 20 साल तो आपके कहीं नहीं गए, उसने नहीं हिलना, और वो आपके अपग्रेडिंग में आ जाता है। जब आप घर बेचना चाहते हैं तो वो नए स्टाइल का किचन बना हुआ होता है, वॉशरूम होता है, फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग भी आप देखें कि कितनी बार वो सिरेमिक टाइल्स लगाई हुई होती हैं जो बिल्डर्स ने, हम उसको निकाल के नए सिरे से वो जो पोर्सलीन की टाइल्स होती हैं, बड़ी टाइलों का आजकल फैशन ज्यादा है, तो वो बड़ी टाइलें लगा उससे खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये सब अपग्रेडिंग में है। जैसे पॉटलाइट्स हैं, पॉटलाइट अगर आप ऐड कर दें अपने प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल आपका घर जमीन से उठ के तो आसमान पे चला जाता है, इतनी मतलब अट्रैक्शन आ जाती है आपके घर में कि आपको खुद एंजॉय करने के लिए आपके पास दिल चाहता है आपका कि भाई रेनोवेशन के बाद में मैं घर में रहूं, छुट्टियां करके इधर उधर ना जाएं, घर में रहें ताकि आप एंजॉय तो कर सकें थोड़ा बहुत। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल का काम है, जैसे जब बेसमेंट बनती है तो आपकी अपग्रेडिंग होती है इलेक्ट्रिकल पैनल में, 100 एम्प से 200 पे आपको एम्प्स का वो।
अच्छा, आप वो भी करवा के देते हो?
सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है, और विंडोज बड़ी होती हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ द सिटी, वो सिटीज को चाहिए कि बड़ी थोड़ी विंडोज जो है ना वो बड़ी लगाएं, तो छोटी विंडोज निकाल के बड़ी विंडोज लगती हैं, उसमें लाइटनिंग और आपका क्रॉसिंग जो हवा की क्रॉसिंग होती है वो होती है उसमें, उससे बड़ा फर्क पड़ता है आपके बेसमेंट में, लगता नहीं है कि आप बेसमेंट में, ऐसा लगता है आप मेन फ्लोर पे ही रह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कस्टमर की अपनी मर्जी से कि उनको किस तरीके से। ड्राइंग में हमारे पास ऑथोराइजेशन होती है कस्टमर के साथ मिलके, हम कोई भी चीज बड़ी छोटी कर सकते हैं उनके मर्जी के हिसाब से, बाकी का हम उनको फिर मशवरा देते हैं, तुम इस तरह कर लोगे तो इस तरह बड़ा हो जाएगा, ये कोना फालतू है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारे आइडियाज भी घर के साथ साथ भी देते हैं, हमने ये नहीं करना कि बस हमको काम मिला है तो हमने फटाफट खत्म किया, जैसे तैसे खत्म करके भागे वहां से, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता हम नहीं निकलते वहां से।
मैं अपना टेस्टिमोनियल भी देना चाहती हूँ कि बल्कि मैंने हर साल मेरे घर में क्या उसको कहते हैं स्टोन वर्क, कौन सा इसको क्या नाम है,
इंटरलॉकिंग
हुई हुई है, मैंने हर साल ही उसका कराया, मगर इस साल फहीम को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। आप यकीन कीजिएगा कि इंटरलॉकिंग 6-7 साल में जाहिर है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, हालांकि हर साल किया था, मगर इन लोगों ने जितने खूबसूरत अंदाज से किया, मैं कहती हूँ खुदा गवाह है कि मैं आपको अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल बता नहीं सकती। फिर हुआ ये कि इसके बाद इसको प्रेशर के साथ धोया जाता है ताकि अंदर की डर्ट निकल जाए और जगह बन जाए। इन्होंने उसके बाद कॉम्पैक्टर लेके आए, फिर इन्होंने सैंडिंग की उसकी और कॉम्पैक्टर, ताकि सैंड नीचे तक जाके बैठ जाए। मैन, यू डिड ग्रेट जॉब, यू डेफिनेटली डिड ग्रेट जॉब, एवरीबडी लाइक्ड इट एंड लव्ड इट कि भाई जिसने तुम्हारा काम किया बहुत बेहतरीन किया। हालांकि हर साल हर उसकी मेंटेनेंस एक जो रेगुलर होती है वो करवाई, बट दिस ईयर दे डिड फिनोमिनल जॉब। नंबर दीजिए अपना,
416-838-7837
थैंक यू फहीम। फहीम, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी प्राइसेस, मेरे लिसनर्स दे आर वेरी क्लोज and they are near to my heart, I request ke please aap bahut pyare tarike se care karna. These are the people jinhone matlab whatever ye sab tumhara karam hai aka ke baat ab tak bani hui hai ki Allah ne in logon ke dil mein ek pyar rakha jiski wajah se hamare sponsors ko bhi taawun mila. To meri aap se request hai to give them extra special care,
inshallah.
Thank you very much. فہیم سے میں نے آپ کی بات کرائی, ان کو فہیم شہزادہ میں کہا کرتی ہوتی ہوں, فہیم شہزادہ سے ہم نے آپ کی بات کرائی. آئیے صاحب ایک گیت تو سنتے ہیں, آپ اس گیت کو انجوائے کیجیے گا, اس کے بعد آئی ہوپ سو آئی ٹیک یو ٹو جناب عاشر عظیم کے ساتھ ملاقات کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے, ان سے ملاقات کی طرف لے کر کے چلوں گی. اسٹوڈیو کا نمبر 416-6201778. یہ صاحب پشتو کا گیت ہے اور سدا آشیانہ آسانہ اور لو گرو فلم سے ہی ہے اور مائرہ خان کے اوپر ہی فلم. مزے کی بات یہ ان دنوں تو اتنے لوگ مجھے جن کے نام مائرہ خان ہے وہ ملے ہیں کہ نہ ہی پوچھے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس فلم کے پورے گیت بھی پورے پورے نہیں دکھائے, ٹوٹے ٹوٹے گیت آ رہے ہیں. چلو لو گرو پشتو سانگ ہے, مائرہ خان پہ ہمایوں سعید پہ پکچرائز ہوا ہے, آپ اس گیت کو انجوائے کیجیے.
دیدن کولے نشم خوب میں زنگ بنا, دیدن کولے نشم خوب میں زنگ بنا, لاوڑو کے دلالو یا ندا وہی پیارے پوہ ندا وا سدا اشنا, لاوڑو کے دلالو یا ندا وہی پیارے پوہ ندا وا سدا اشنا. سبر اشنا نور مکڑا قبر, اشنا نور مکڑا قبر کبلے نشم صبر, اشنا نور مکڑا قبر, اشنا نور مکڑا قبر دخلی منی رات بل کا مشالنا, دخلی منی رات بل کا مشالنا, مشالنا لاوڑو کے دلالو یا ندا وہی پیارے پوہ ندا وا سدا اشنا, لاوڑو کے دلالو یا ندا وہی پیارے پوہ ندا وا سدا اشنا.
لو جی کیسا لگا گانا آپ کو, پیسے دے دینا آپ مجھے. اسٹوڈیو کا نمبر 416-6201778 416-6201778 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. ڈیفینیٹلی لک فارورڈ کہ ہم آپ سے بات بھی کرتے ہیں. چل ایک اسپانسر کا پیغام لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ایک اور ملاقات کی طرف لے کر کے چلیں گے. آپ میرے ساتھ بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں, چوڑیاں لے لو, کڑے لے لو, چینز لے لو, سٹون جیولریز, روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے, یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے, روبی جیولرز 7086 ایئر پورٹ روڈ 9056776888.
Spear and McCabe Menswear, fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compare kar sakte hain aap Harry Rosen, Burberry or Hugo Boss se. 100% Italian wool suits from $249.99, 100% Egyptian cotton shirts from $29.99, 100% Italian wool trousers from $49.99. We have moved to a new location in Heartland Town Center, 775 Britannia Road West, Unit 7B, Mississauga pe. Hum Sundays ko bhi open hain. انفارمیشن کے لیے کال کیجیے ایٹ 905-670-3388 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ spearandmckay.com.
اکال ٹرک اینڈ لوم
تاڈے ٹرک بادشاہ دی کوالٹی سروس, ریپیئر, آئل چینج, واش تے مینٹیننس.
ایک اور خوشخبری,
نارتھ امریکن, چائنیز تے کورین نویں تے استعمال شدہ ٹائر وتھ فل وارنٹی.
اکال ٹرک اینڈ لوم
1776 Mearside Drive, 905-565-1100.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही, बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन। पायल ज्वेलर्स के असलम भाई को कॉल करें ना 905-790-7879, दैट इज 905-790-7879।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसेस सागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 905-232-3663 विलेज टेस्ट।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
जी साहब, एक खबर से खुशी अपडेट करना चाहती हूँ। मेरे साथ बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है, राजा बादशाह इनको कहा करते हैं। इनका नाम राजा बादशाह, जाहिर है अपनी सल्तनत के बादशाह हैं। वैसे भी ऑल स्टेट के ऑफिस के इंचार्ज हैं, हेड हैं। सो अंडा दे शेर जंगल का बादशाह, अंडा दे बच्चा दे, दैट इज वॉट राजा बादशाह। राजा बादशाह ऑल स्टेट के एजेक्स पिकरिंग के ऑफिस को लीड करते हैं। पूरे ऑन्टेरियो से जहां कहीं भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस के लिए आप राजा बादशाह से बात कर सकते हैं। राजा जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
अस्सलाम वालेकुम,
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? मुझे आमिर कह रहे थे कि राजा बादशाह ने कहा था कि आरफा भाई जी से कहीं वो मुझे कॉल ना किया करें, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैंने फिर भी कॉल कर दिया
है, उन्होंने दिल की पहचान ली। नहीं जोड़ बोल रहे हैं,
हम दिल की खबरें जानते हैं।
नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही एक अच्छा इंसान,
बहुत प्यारे इंसान हो राजा बादशाह। बहुत से लोग आजकल, आपको पता ही है, आगे ख्याल किया जाता है कि शायद आते वक्तों में जिंदगी थोड़ी सी और टफ होती चली जा रही है, रीजन बीइंग के कुछ और लोगों की जॉब्स भी गिरेंगी। हालांकि कैनेडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली विल बी देयर इन एवरी वे शेप एंड मैनर। मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत से लोग इसी डर की वजह से अपनी गाड़ी चलाते हैं मगर गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं रखते, क्या फाइन्स, क्या पेनल्टीज हो सकती हैं? और अगर एक शख्स गाड़ी के बगैर, इंश्योरेंस के बगैर चलाता है, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इन द लॉन्ग रन?
देखिए, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंस, मतलब इंश्योरेंस के बगैर चला सकता ही नहीं है ना, इट्स इलीगल। तो आप जब कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं तो इफ ऑज अंडर द कन्विक्शन, आप कोई क्राइम कर रहे हो, इफ यू आर कन्विक्टेड आपको टिकट मिलेगा। टिकट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मिसाल के तौर पर आप इंश्योरेंस के प्रूफ के बगैर या इंश्योरेंस ऐसी गाड़ी चला रहे हो जो इंश्योर्ड नहीं है, तो उसकी ज्यादा मेजर किस्म की इम्प्लीकेशन है। अगर आप गाड़ी इंश्योर्ड है पर आप चला रहे हो विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। कोई एक इसका वन लाइनर आंसर इसलिए नहीं है कि इट डिपेंड ऑन केस बाई केस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन दैट हैपेंड, बट द बॉटम लाइन इज कि इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी इलीगल है, आप नहीं चला सकते हो, नहीं चलाइए, अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर ना करिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व है। अगर आप इंश्योर्ड नहीं है और आप पे कोई लास्ट सुइट ओपन हो जाती है, कोई और खुदा न खास्ता किसी किस्म की थर्ड पार्टी एक्शन ले लेती है एंड यू हैव नो बैकअप, सो उस सिचुएशन में यू आर इन ह्यूज ट्रबल। सो तो इंश्योरेंस जरूर रखिए अपनी।
4 1 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 2 9 0 3 7 7 3। राजा भाईशाह मेरे तो वही सिंपल से सवाल है कि इंश्योरेंस होनी जरूरी है, आपको इंश्योरेंस के बारे में पता जरूर होना चाहिए। बहुत से लोग नंबर्स के ऊपर जाते हैं, प्राइस के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट समबडी मस्ट नो जब वो गाड़ी की इंश्योरेंस देता है, और वो क्या चीज है जो उसको लाजमी अपनी इंश्योरेंस के राइडर्स में शामिल करना चाहिए?
देखिए डिपेंडिंग ऑन द गाड़ी, देखें गाड़ियों की एज होती है और एज के हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशंस भी होती है। मिसाल के तौर पे नई गाड़ी है 2 साल 4 साल 6 साल तक, एनीथिंग विद इन 10 ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम आपको चाहिए कि फुल कवरेज उसमें मिले। फुल कवरेज का मतलब है कि उसमें एक्सीडेंट का पार्ट भी लें जिसे हम कोलिजन कहते हैं, इन एनी केस आपकी तरफ से गलती हो गई या दूसरी पार्टी की तरफ से आपकी गाड़ी कवर होनी चाहिए। अब कॉम्प्रीहेंसिव का पार्ट भी लें, कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स कि कोई ऐसी सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट कंट्रोल ऑन दैट सिचुएशन, जैसे कोई फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, वेंडलिज्म हो गया, कोई फ्लाइंग एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट आ गया, हिट योर कार एंड कॉज डैमेज, तो फुल कवरेज जरूर रखिए। हाँ, फिर देयर इज अ चॉइस, इट इज मतलब एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहते हुए हम लोग इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि आप फुल कवरेज लें या थर्ड पार्टी लें। हाँ, ऑप्शंस आपके पास होते हैं, एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज योर डिसीजन कि आपको क्या चीज बेस्ट पॉसिबल लग रही है, सूटेबल लग रही है। तो जनरली 10 साल पुरानी जो गाड़ियां होती हैं, 12 साल 15 साल, तो उनमें लोग डिपेंडिंग ऑन देयर बजट एंड सिचुएशन की गाड़ी की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है तो लेट्स गो विद द थर्ड पार्टी ओनली, तो वो फिर फुल नहीं लेते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे आर सेविंग। तो वो आप जरूर डिस्कस कर लिए करिए कि जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कोड बना रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपको कवरेज किस टाइप की चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप सजेस्ट करें। तो मैंने उन्हें फिर दोनों सिचुएशंस बताई कि आप इस तरफ जाते हैं, फुल में ये है, इसमें ये है, फिर मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी। तो इसलिए कॉल फोन नंबर देने का या कॉल करने का या कहने का कि कॉल करिए कोड लीजिए, मकसद यही है कि आप डिस्कस करिए कि आपकी बेसिकली नीड क्या है।
नंबर दीजिए अपना प्लीज।
जी नंबर मैं दे देता हूँ 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 2 9 0 3 7 7 3।
अभी आपने एक लफ्ज कहा कि यू कैन नॉट सजेस्ट समबडी, बट व्हाई? बिकॉज इफ समबडी सेज के भाई मैं, मेरी नई गाड़ी है, मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देना चाहता हूँ, तो यू कैन सजेस्ट देम और यू कैन गाइड देम दो?
हाँ, सजेशन, देखें सजेशन का मतलब है कि मैंने कह दूं कि भाई ठीक है आपके पास 2012 की गाड़ी है और आप इस पे थर्ड पार्टी ले लो। मैंने कह उन्हें हमारा जो पोजीशन है दिस अलाउ अस टू जस्ट से कि आप फुल बी ले सकते हैं उसकी ये प्राइस होगी, आप थर्ड पार्टी बी ले सकते हैं उसकी ये प्राइस होगी। हाँ, फर्दर अगर आपके क्वेश्चन हैं कि यार थर्ड पार्टी लेने से मुझे बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो एज एन एडवाइजर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन क्योंकि दिस इज ए बेसिकली लाइबिलिटी आपका, ये इसका रिस्क की इंश्योरेंस होती है, इसका रिस्क इंश्योरेंस, जब आप रोड पे होते हो, अगर मैंने खुदा ना खास्ता किसी से कहा कि यार अब ये कवरेज ले लो और कल को उन्हें जरूरत पड़ गई और उन्होंने बोला जी आपने मुझे उस टाइम नहीं प्रॉपर गाइड किया, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी गिव देम फुल ऑप्शन, वी गिव देम फुल डिटेल्स सो दे कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन अकॉर्डिंगली।
राजा बादशाह 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 2 9 0 3 7 7 3 आपका नंबर है। नो ऑब्लिगेशन कोटेशन के लिए आप राजा बादशाह साहब को कॉल कर लीजिएगा। राजा जी मुझे ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ से लोग आपको कॉल कर सकते हैं?
जहाँ जहाँ से आप बोले वो कर
सकते हैं। मेरी चंदा, अब ये क्यूबैक से तो नहीं कॉल कर सकते ना?
हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा मजाक का इसमें वो ट्विस्ट किया ना, ओंटारियो में कहीं से भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नॉट ओनली दुरहम, नॉट ओनली जीटीए,
पूरे ओंटारियो में जहाँ जहाँ आवाज जा रही है।
जी बिल्कुल, आप मुझे कॉल करके एक कस्टमाइज कोड वेयर देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन इट आप मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक घर है, इन्हें कम्बाइन करते हैं तो $1775 की सेविंग भी है,
इससे भी ज्यादा। इवन दो अगर आपका घर नहीं और आप किराए के घर में रह रहे हैं तो टेनेंट इंश्योरेंस के साथ भी आप कॉम्बाइन कर सकते हैं, इज दैट राइट?
जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट कम्प्लीटली।
नंबर दीजिए।
जी 6472903773।
290-37-73 290-37-73 मतलब माँ प्यो तो एक ही पुत्र है कि दो तीन बच्चे ने?
इसका मतलब समझा दें फिर जवाब देते।
बेटा एक है कि क्योंकि मतलब जितना लाडला लगता कल्ला ही पुत्र है।
मैं हम लोग
हाँ?
मैं आपको बताऊंगा तो फिर
माशाल्लाह 8 बहनों का एक भाई हो।
हाँ जी माशाल्लाह बहुत सारे हैं जी।
अल्हम्दुलिल्लाह
हम ये सब का कंसेंट लेना पड़ेगा कि यार
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई लव यू बेटा, जीते रहो। राजा बादशाह ऑल स्टेट के साथ हैं और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऑनेस्टली जितना फीडबैक है ऑलवेज गुड फीडबैक, ही डज नॉट बॉदर यू एट ऑल। आप अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस के लिए मशवरा कीजिएगा, मशवरा तो दीवारों से भी कर लेना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच,
थैंक यू। ओए राजा बादशाह अंडर राइटर भी हैं, इज दैट राइट?
जी डायरेक्ट राइटर्स हैं, अंडर राइटिंग हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी है एंड वी राइट द पॉलिसीज। जब हम डायरेक्टली राइट करते हैं तो दैट मेक्स अस ए डायरेक्ट राइटर्स। सो यस आप 100% राइट।
सर मुझे एक बात बताएं, ये जो मर्सिडीज है, मर्सिडीज की गाड़ी कॉपी नहीं होती, तो मर्सिडीज की गाड़ी तो मतलब सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ज्यादा है, फिर इसकी इंश्योरेंस क्यों ज्यादा है?
देखिए ये एक जिस तरह का हमने सवाल किया है मैं भी इस तरह का जवाब देता हूँ आपको। देखें इंश्योरेंस जो होती है ना उसकी प्राइस कभी भी कोई वन फैक्टर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी गाड़ी है तो बस ये इसकी प्राइस नीचे या ऊपर उस गाड़ी की बेस पे होनी चाहिए। देयर आर इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड देयर आर ओवरऑल फैक्टर्स। क्विकली समराइज कर देता हूँ, इंडिविजुअल फैक्टर्स जो होते हैं वो मिसाल के तौर पर आपकी एज क्या है, आपने कब लाइसेंस लिया था, आपके ड्राइवर रिकॉर्ड में कोई टिकट तो नहीं है, कोई क्लेम तो नहीं है।
मतलब कितने अर्से तक रहता है ड्राइवर रिकॉर्ड में क्लेम?
नहीं इंश्योरेंस रिकॉर्ड में क्लेम रहता है, ड्राइविंग रिकॉर्ड में टिकट 3 साल तक रहता है।
इंश्योरेंस रिकॉर्ड में कितना अर्से रहता है?
क्लेम तकरीबन 10 साल तक का रेट करता
है। ये तो पता है ना कि एक एक्सीडेंट हो गया, अब ये तो नहीं कि मेरे वो आपने मेरे साथ नत्थी कर दी है, अब इंश्योरेंस
नत्थी कर दी है ना, क्या करें हम, नत्थी करेंगे बस जबरदस्ती।
ये तो मोनोपोली हो गई यहाँ पे।
देखें सुन तो लेना बात पूरी कर। देखें जब हम इंश्योरेंस हिस्ट्री देखते हैं तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री को चेक किया जाता है, उसमें कोई एट फॉल्ट या नॉट एट फॉल्ट है उसको रेट किया जाता है। बट मीन्स के 6 साल या 6 साल से पुराना कोई भी आपका क्लेम होता है जो कि एट फॉल्ट हो, इट हैज नो इम्प्लीकेशन ऑन यू, उसकी वजह से आपकी प्राइस नहीं बढ़ती। बट क्योंकि वी हैव सम रेगुलेशन रूल्स, तो हमें वो 10 साल तक हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है।
तो जहेज में ये 10 साल रहता है।
हाँ जो ओवरऑल फैक्टर्स में बता रहा था जिसमें आपने मर्सिडीज को देख लिया कि आप एक फैक्टर है कि गाड़ी जो है लास्ट ईयर या इन द मार्केट हाउ दिस कार एंड मेक एंड मॉडल इज डूइंग, इफ देयर आर मोर क्लेम्स कमिंग अप और क्या हो कह रहा है उस मेक और मॉडल के साथ। तो वो ये कहना कि यार ये गाड़ी है, गाड़ी देखें जब 2000 की गाड़ी है या 2 लाख की गाड़ी है, जब वो रोड पर है तो इट इज ऑन ए रिस्क। तो हम बेसिकली एज एन इंश्योरेंस कंपनी उस रिस्क को इंश्योर करते हैं।
सही नंबर दीजिए अपना।
समझ तो नहीं आई आपको वैसे?
ओ मेरे चंदा एडी भी तू एडी भी में रही हुई। अच्छा बताओ ना मेरे सामने, बताऊ मैं
क्यों धमकियां क्यों दे रही हैं आप?
आई लव यू।
अच्छा 6472903773 इस पर कॉल करिए। अच्छा एक और छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं, मुझे 2-3 दिनों से काफी सारे लोग कह रहे हैं कि हमने आपको टेक्स्ट मैसेज किया नहीं मिला। देखें जब आप ऑफिसर की वेब पेज पर जाएंगे तो वहां मेरा ट्रैकिंग नंबर है, उस ट्रैकिंग नंबर पर टेक्स्ट मैसेज रिसीव नहीं होते। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये सेल फोन देने का मकसद यही है कि इफ यू कॉल और टेक्स्ट और वॉइस मैसेज ऑन 6472903773 तो मुझे इस पर टेक्स्ट मैसेज करिए अगर करना हो आपने तो।
यानी ही इज इन चार्ज ऑफ एजेक्ट स्पीकिंग, ये जो हम आपको यहाँ रेडियो पे नंबर देते हैं दिस इज अ सेल फोन नंबर और इस पे आप जैसे खास लोगों की नंबर जाता है, वरना तो पूरी दुनिया इनको कॉल करती है। तो वो ऑल स्टेट की तरफ से ऑल स्टेट के ऑफिस का नंबर है, हम आपको सेल फोन देते हैं 290-647-290-3773। राजा बादशाह थैंक यू वेरी मच,
बहुत शुक्रिया।
अपनी शिकायत आप भी कर ही देती कोई।
तो ये कड़ी शिकायत की थी मैंने।
थैंक यू। 6472903773 आपका नंबर है। लेट मी टेक यू टू जनाब आशिर अजीम साहब के पास। आज मैंने आशिर अजीम साहब से मुझे पाकिस्तान के बारे में रिसेंटली एक चीज पता चली और मैंने कहा मैं आज वो भी सवाल इनसे करती चलूंगी क्योंकि परसों चौथ में हमने वो प्रोग्राम आपके साथ खास तौर पे एयर करना है। आशिर अजीम साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम।
आपको जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही?
अच्छा जी बिल्कुल आ रही है। लगता है अरे दफ्तर ची बैठे हुए हो आज।
ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਸ਼ਰ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल जो यकीनन मेरा ख्याल है द बुलियर्स द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक मैं ये कहती हूँ कि हम आम आदमी जब बुली करते हैं तो हम उनको हर तरह की सजा पनिशमेंट देने के लिए तैयार होते हैं मगर वो जो लीडर्स इस वक्त बुलिंग कर रहे हैं उनको कोई सजा देने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में दो तीन बड़ी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। G7 की मीटिंग हो रही है यहाँ पे। अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉमिस था इलेक्शन से पहले कि वो बिल्कुल जंगों के खिलाफ हैं, तमाम जंगों को बंद कर देंगे। उन्होंने 100 डेज के अंदर जंगें बंद करने का अंदिया दिया था बट ना तो यूक्रेन की जंग रुकी, यूक्रेन और रशिया की जंग भी नहीं रुकी और गजा की जंग ने तो क्या खत्म होना था। जब दिल चाहता है गजा पे आज भी बमबारी होती है, सीरिया पे भी बमबारी हुई, गोलान की पहाड़ियों के ऊपर भी बमबारी होती है और जे जाए कि एक नया महाज खुल गया है और वो महाज है बिटवीन फ्रॉम वेयर दिस इसराइल एंड ईरान की ये जंग शुरू हो गई। और इसराइल इस वक्त कितने महाजों पे लड़ रहा है कि एक तरफ वो शाम की तरफ लड़ाई कर रहा है, एक तरफ वो गजा के साथ लड़ाई कर रहा है और ये उसने जो नया चैप्टर शुरू कर लिया है और उसने बल्कि पूरी दुनिया को कहा है कि अगर तेल अवीव पे अटैक हो सकता है तो न्यूयॉर्क पे भी अटैक हो सकता है। और ये कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना अपने पास रखा तो बाकी जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं उनको भी पर लग जाएंगे वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अ कंट्री जो इटसेल्फ इज वेरी वेल इक्विप्ड विद ऑल द न्यूक्लियर एमिनेशन, व्हाट इज देयर रिजर्वेशन अबाउट ईरान?
जहां से आपने शुरू किया ना वो बड़ी मजे की बात थी। आपने कहा कि जी इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई किसी को बुली करता है तो उसके खिलाफ सजाएं होती हैं या जो भी होता है और अगर फिर वो जब हायर लेवल्स पे बुली करते हैं तो वहां क्यों नहीं कुछ होता। तो वो एक काफी पुरानी सेइंग है, वो कहते हैं लॉ इज लाइक अ कॉबवेब, तो मकड़ी का जो जाला, कहते हैं कि जी इट ट्रैप्स द स्मॉलर थिंग्स बट द स्ट्रांग गो थ्रू इट। तो मकड़ी का जाला ऐसे ही होता है ना जी, अगर आप बड़े हैं तो आप तो उसके बीच में से यूं करके गुजर जाते हैं लेकिन अगर आप छोटे से हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं और बुरी तरह फिर आप खाए जाते हैं। तो खैर हमेशा से ये ऐसे ही है और ताकत का कोई नेमल बदल भी नहीं है, ताकत किसी और की जुबान समझती भी नहीं। और इसी पे जो लास्ट वाला आपको पॉइंट है कि जी ताकतवर क्यों नहीं चाहता कि बाकियों के पास ताकत हो, तो आप कह रहे हैं कि जी ईरान के पास अगर एटम बम आ गया तो पता नहीं दुनिया के साथ बहुत बुरा होगा और ये कह कौन रहा है वो जिसके पास अपना इलीगल एटम बम है। तो जवाब तो वही है कि जी ताकत का फायदा ही तब तक है जब तक आपके पास एक्सक्लूसिव हो। और हम आपको याद होगा पिछली दफा भी हमारा किसी टॉप पे ये बात चली थी और मेरा ये मानना था कि जो दुनिया में पीस सिर्फ उस वक्त होता है जब तक बैलेंस ऑफ पावर हो। जहां बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो और ताकत यकतरफा हो तो वहां पे फिर सिर्फ जुल्म होता है, वहां पे पीस नहीं हो सकता। या आप हर जगह की रिलेशनशिप में देख लें, आप हमेशा देखेंगे जो गरीब आदमी ने माफ कर दिया बड़े आदमी। आपने कभी किसी बड़े आदमी को गरीब आदमी को माफ करते देखा? उसको मारेगा भी, उसको आखिरी हद तक लेके जाएगा। गरीब आदमी ने जी माफ कर दिया क्योंकि वो बेचारा और करता क्या। सो इशू यही है कि जी बेसिकली आप ये चाहते हैं, आप ये कहना कि जी बाकी दुनिया को पार चल जाएंगे अगर एक के पास एटम बम आ गया तो भाई सबसे ज्यादा एटम बम को पास। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी लिव इन जी। और थोड़ा सा हमारे पास एक जगह रही थी وقت نے ہماری ہیومن ہسٹری میں میرا خیال لاسٹ 60 to 70 ایئرز ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں ایک ملٹی لیٹرلزم, اور وہ بھی لاسٹ 60-70 ایئرز نہیں, وہ مطلب ورلڈ وار ٹو سے لے کے 2000 تک ہی رہا. اس کے بعد جب دنیا 1999 میں جب رشیا چلا گیا اور دنیا دوبارہ یونیپولر ہوئی, تو پچھلے 25-30 سال میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی, وہ سیمبلنس نہیں تھی. ناؤ اٹس پروگریسولی گیٹنگ ورس. سو یس, اٹ از ویری سیڈ, دس از ہاؤ اٹ از. اینڈ یہ کیا ہوا؟ اچھا جی, میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو,
آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا تھا ٹی وی کی اسکرین پہ؟
پتا نہیں جی, وہ بلنک ہو کے ڈارک ہو گیا تھا سب کچھ, تو میں نے کہا شاید اس وجہ سے کوئی ایرر آیا تھا. اسی میں
طوفان آیا تھا, جیسے امریکہ میں زلزلہ اور ٹورنیڈو آیا تھا نا, اسی طرح سے. اچھا, مجھے سر آپ یہ بات بتائیے گا کہ ایران نے, مجھے بے اختیار نا عراق کا یاد آتا ہے کہ صدام حسین بھی یہ کہتے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, مگر بیچاروں کے پاس نہ کوئی نیوکلیئر ویپن نکلا نہ کچھ اور نکلا. یہ سر ایران بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے, مگر ڈو یو تھنک کہ آج اسرائیل نے ان کا سب سے پہلے تو ان کی امپورٹنٹ شخصیات کو ایلیمینیٹ کیا, پھر انہوں نے ان کی جو اسلحہ کی جگہ تھی ان کو ضائع کیا. آج ان کو لگ رہا تھا کہ جو اسٹیٹ ریڈیو ہے وہ ان کے مورال کو اپ رکھے ہوئے تھا. ٹوڈے دے اٹیک دیٹ, اور نشریات جو ہیں جاری رہیں, خون و خون بھی لوگ اپنا کام کرتے رہے. What do you think کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جارڈن بھی اسرائیل کے ساتھ کام کر رہا ہے, اپنی ایئر اسپیس ان کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے, جب ایران فائر کرتا ہے تو اس کے ڈرونز کو گرا دیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, آج یہ دو نیوز ہیں. پہلی نیوز کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ان G7 کی میٹنگ میں, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران نے انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے, جیسے پاکستان اور انڈیا کی وار میں انڈیا نے انٹروین کرنے کے لیے درخواست کی تھی مارکو روبیو کو بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی. ویئر ایز آج جو ٹیلی گراف ہے برطانیہ کا, اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے انٹروین کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں آپ کے ساتھ کوٹ اینڈ کوٹ شیئر کر دیتی ہوں, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے. یہ متضاد خبریں ہیں, یعنی ایک طرف سے خیال کیا جاتا ہے ایران نے تو اپنا اتوار کو ان کی میٹنگ تھی, انہوں نے میٹنگ بھی نہیں کی امریکہ کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ شروع ہو گئی تو اب ناؤ یو اوپن دا جہنم کا دروازہ تم نے کھولا, بھگتو. بتائیں گے اس کے بارے میں؟
کوئی بڑی بات نا, کہتے ہیں کہ جی دا فرسٹ کیجولٹی آف وار از ٹروتھ, تو یہ تو سچ تو کوئی نہیں بولے گا. اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو نو ایٹ دس اسٹیج, آبویسلی لیٹر وی ول نو, لیکن ایٹ دس اسٹیج اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو نو کہ جی کون سچ کہہ رہا ہے. دیکھیں, جو بیلنس آف پاور ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ کر دیا اور اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی اور یہ پاور ہے, تو بھی مسٹ ریمبر کہ جی اسرائیل اکیلا نہیں ہے, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیچھے تھا اس کے پورا امریکہ ہے, پیچھے اس کا پورا ویسٹ ہے, یو کے ہے, یورپین یونین ہے, تو یہ سب ہے, تو وہ اکیلا تو کوئی ایسا کم ہے کر رہا. ایران کمپیریٹیولی بہت اکیلا ہے, اس کے ساتھ سپورٹ. آپ نے جارڈن کی بات کی, باقی بھی اسی طرح. تو یہ جتنے ممالک ہیں, فرض کریں جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, ایٹسٹرا, ایک دور تھا جب یہ 1967 کی وار جب ہوئی اسرائیل کے ساتھ, اس وقت یہ مور انڈیپینڈنٹ کنٹریز تھیں, لیکن ظاہر ہے یہ بڑا فیزڈ ایک پروسیس ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ September 11 جب 2001 ہوتا ہے, تو ایک لسٹ آف کنٹریز بنتی ہے کہ جن کو ہم نے ہٹانا ہے پاورس, تو پچھلے 25 سال میں وہ سارے کے سارے پھٹے ہیں. مطلب اس میں آپ کے لیبیا تھا, اس میں آپ کا صدام حسین تھا, اس میں یہ تمام ملکوں کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا تھا کہ ان کی ملٹری کیپبلٹی, ان کی اکنامک مائٹ کو ڈیگریڈ کیا جائے تاکہ ایک راہ بھاگ. پھر جو ایران اکیلا رہ جاتا تھا, لیکن ایران کی پھر پراکسیز تھیں جو چل رہی تھیں, تو پچھلے 2 سال میں آپ نے وہ ایران کے ساتھ ایک پراکسیز ڈیگریڈ کی. और मतलब उसको जो भी सपोर्ट करते थे हुतीज हमास सीरिया की में जो उसकी सपोर्ट थी जो क्या नाम था उनका असद की रिजीम जो थी आपने उन सबको डिक्रेट किया तो अब वो खत्म होगी मतलब उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज खत्म होगी तो फिर अब अकेला ईरान आए और ज़ाहिर है इसमें सब लोग शामिल थे प्रोफेसर अमरीका सब शामिल तो अब जाके अकेला ईरान रह गया तो इसराइल को भी यही नजर आ रहा था कि जी ये सबसे अच्छा हॉट टाइम है गोफर टाइम तो उन्होंने इस वक्त पे अटैक किया और वो उसमें अब प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि अब आपने भी इंटरव्यू देखा होगा उनका क्या नाम है जो नेतन्याहू है और जो एक मीडिया में डिबेट भी चल रही है क्योंकि इसका मकसद क्या ईरानी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करनी है या इसका मकसद ईरान में रिजीम चेंज है के एक अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाइफ है तो आप ये देखें नहीं कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस निकलते हैं तो जमहूर तो कहीं भी नहीं है ना जी आवाम की सुनता कौन है तो आप अपनी मर्जी से जिसको आप लगाना चाहें तो रिजीम चेंज का यही मतलब है अगर इसको अभी आप इजिप्ट की सेंस में ले जाएं तो एक इजिप्ट वो था वही इजिप्ट जो अनवर सादात के साथ इजिप्ट था वो फर्क इजिप्ट था और जो आज सीसी के साथ इजिप्ट है वो फर्क इजिप्ट जो आज का जॉर्डन है और जो सीरिया है और जो सो और जो जो लीबिया कदाफी के अंडर था और जो इराक सद्दाम हुसैन के साथ था वो आज तमाम तब्दील हो गए हैं क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है आप अपनी मर्जी के लीडर लगा देते हैं तो आप देखें कि इजिप्ट में जो पीस कैरमैन जाना चाहते थे जो जो इसराइल के बॉर्डर को अप्रोच करना चाहते थे सीसी ने उनको रोक दिया तो उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप एक्सेस ही उन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं देते क्योंकि ये सब आपके साथ मिलेंगे तो आपने अपनी मर्जी की रिजीम लगाते हैं हर जगह ताकि आप मामला को कंट्रोल रख सकें ईरान में भी अब आप अपनी मर्जी की एक रिजीम लगाना चाहते हैं वो देख रहा था वो राजा पहली साहब का जो बेटा है वो कह रहा था कि जी हम ईरान में जमहूर लाएंगे तो भैया आपके अब्बा भी जमहूर से तो मतलब ये क्या फजूल बातें हैं बट दैट्स व्हाट इट इज राइट
सो रजा पहलवी जो थे ही वर्क फॉर ईरान और फॉर अमेरिका एक अरसे तक और फिर इसके बाद जब उनका इख्तिताम हुआ तो दो बार जमीन भी न मिली कूचा यार में तो अच्छा अब उनके बेटे जो हैं इज रेडी टू टेक ओवर ईरान इज दैट राइट सो
मतलब जाहिर है उनकी ख्वाहिश तो ये है ना जी बाकी अब वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो सारी बातें ही है ना कि जी अभी रिजीम चेंज कर पाएंगे या नहीं बिकॉज होता यह है कि वॉर से बहुत अब देखिए नेतन्याहू ने जब ये वॉर शुरू की है तो वो बुरी तरह सफर कर रहा था गाजा में इसराइली लोग भी उसके खिलाफ थे तो अब जब उसने ये वॉर शुरू कर दी ईरान के साथ तो वो पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा उसके पास वापस आ गई होता यह है कि कंट्रीज बहुत बुरी तरह डिवाइडेड होती हैं बहुत दफा वॉर जो है वो उनको इकट्ठा कर सकती है सो वी डोंट नो कि जी ईरान की जंग ईरान को यूनाइट करेगी अभी तक तो खबरें ये हैं कि इसराइल के हमलों ने उनको यूनाइट किया उन्हें नेशनलिज्म बढ़ गई है बट ये कितनी देर चलती है उसका इम्पैक्ट क्या होता है कैन ईरान कीप अप विद दिस क्योंकि इसराइल के पीछे तो दुनिया के रिसोर्सेज हैं वो आती हैं लोग ना माने ऑफिशियली कि जी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे लेकिन सब उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं ईरान ऑन इट्स ओन है और बहुत अरसे से एक ऐसी कंट्री है जो कि सैंक्शंस के अंडर रह रही स्टिल इट्स पुटिंग अप अ गुड फाइट फॉर इट्स साइज हाउ लॉन्ग कैन इट कंटिन्यू विल देयर बी अ रिजीम चेंज विल देयर बी एबल टू डिस्ट्रॉय देयर वेपन्स सो एज आई सेड इट्स नेवर फॉर अ फेयर वर्ल्ड और लेसन लर्न यही है कि जी आपके ममालिक में जो आके आपको ये जमहूर की बकवास पढ़ाते हैं सॉरी यूजिंग दैट वर्ड उनमें जमहूर खुद भी कभी नहीं है वो सिर्फ आप में एक ऐसी रिजीम चाहते हैं जो उनको उनको ज्यादा फेवरेबल और आप चली है रस्म
सर आज नेतन्याहू ने एक मुल्क जो उनसे 1600 से मील के फासले के ऊपर है उसके ऊपर चढ़ाई करके यानी आम शहरी बेशुमार आम शहरी मारे हैं जाहिर है उन्होंने जो टारगेटेड पर्सनैलिटीज थी उनको भी मारा है मगर व्हाट यू थिंक के व्हाई यूरोप इज सेइंग के व्हाट एवर इसराइल डिड इट इज फॉर द सेक ऑफ देयर सेफ्टी क्या उन्होंने आंखों पे पट्टी चढ़ा ली है या व्हाट इट इज
अब ये तो जी नोबडी रियली नोज, लेकिन जाहिर है देखें आज से जब 1948 में जब ताजे बरतानिया ने इनको एक खास जगह दी कि जी ये हम आपका मुल्क बना रहे हैं, जिसमें लोग बसते थे और उनके घर उजाड़ दिए, तो कोई तो उनका आपस में रिश्ता था। ठीक है, हम रिश्तों को नॉर्मली बड़े छोटे सेंस में सोचते हैं, मेरे ख्याल में वो डीपर है, बट वो मेरा ख्याल होगा। फिर यूएस की जो रिलेशनशिप है, कहने जी ये तो मेरा मैं इसके लिए जितना मर्जी नुकसान उठाऊं, इसके कहने पे मैं जितनी मर्जी जंगे लड़ू, तो जाहिर है वो कोई एक रिश्ता है। तो यूरोप का और अमेरिका का और बरतानिया का इनका कोई एक रिश्ता तो आपस में है नहीं, तो कोई वजह है। अब आप देखें कि अमेरिकी जो कांग्रेस है, अगर आप उसे देखते हैं, तो उसमें आपस में बड़ी डिविजन रहेगी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, लेकिन जब भी जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी उनकी पॉलिसी इसराइल की तरफ बिल्कुल एक ही होगी। यूरोप में भी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी इसराइल की तरफ एक ही होगी। आई थिंक कि जी इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे वजह जी बैंकिंग का स्ट्रक्चर, इसके पीछे वजह है कैपिटलिज्म, क्योंकि मेरी नाची ब्राइन है इसके पीछे वजह कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म में एक सर्टन इलीट पावर जो है वो ऊपर बैठी हुई जो कि सबको चला रही, और जिसके पास पैसा है और सब सबके सेंट्रल बैंक, सबके बैंकिंग सिस्टम, सबकी इकोनॉमीज, सबकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। वो बैंकिंग सिस्टम जिसको पैसे देना शुरू कर देता है, वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम जिसमें सारा आपको जिस बदले को ज्यादा पार्टी जिसको ज्यादा फंडिंग मिलना शुरू हो जाती है वो जीतना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर है हर शख्स उस डॉलर का गुलाम है। एंड दिस आई थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट। ये तो अगर फ्यूचर में 20-25 साल में जब ये अगर स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट, तो इशू मेरी नाची ड्राइव में वो कैपिटलिज्म और वो बैंकिंग और वो सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स है जो इस वक्त दुनिया में है, जो जिसमें जो किसी इंसानियत को जो किसी ऐसी किसी चीज को नहीं समझता, उसके लिए कोई मोरालिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उसमें तो आपकी वेपन्स इंडस्ट्री शामिल है, उसमें आपकी एनर्जी की इंडस्ट्री शामिल है। सो इट ओवरऑल फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड आई थिंक इट इज द बैंकिंग, द कैपिटल, the privatization where money is taken from the majority of the people and shifts up to a very small minority, which then creates the world that it wants. आपके आंखों के सामने आप देखें ना, इलॉन मस्क इलेक्शंस में कंट्रीब्यूट करके अपने मुंह से कहता है कि अमेरिका के जो इलेक्शन थे ये ट्रंप को मैंने जिताया, या वो जो कौन सी स्टेट में वो जो हो रहा था अमेरिका में इलेक्शन जज के लिए हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए कोई इलेक्शन होते हैं, उसमें जिस तरह इलॉन मस्क हर एक को मिलियन डॉलर दे रहा था, तो मतलब आपकी और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सीधा सा है कि आप पैसे दे के
कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है, इसी तरह आपने कांग्रेस खरीदी हुई है, इसी तरह आपने सब कुछ खरीदा हुआ है, तो पूरी दुनिया आपके इसी तरह चल रही है
सर। अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आप इमेजिन कीजिएगा वीकेंड के ऊपर डेमोक्रेट्स, यानी एक वो अबॉर्शन के चक्कर के बीच में ये शख्स जिसने फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप को जिताया भी था वॉल्टर, इसने जो आपकी कांग्रेस की मेंबर है, सेनेटर है, उसको और उसके हस्बैंड को घर जाके मार के आ गया, एक और जो है वो तो बच गए हैं। तो फिर प्रोटेस्ट को आप देखिएगा, 250th एनिवर्सरी ऑफ आर्मी यूनिवर्सिटी पे जो प्रोटेस्ट हुई हैं, तो विच डायरेक्शन अमेरिका इज गोइंग डोनाल्ड ट्रंप, आई एम अफ्रेड कि वो किस तरह चले फिर रहे हैं।
वैसे तो परेड ऐसी थी, मतलब इससे तो अच्छी हमारी एनसीसी के लड़कियां परेड की वो अमेरिका में एक तरफ परेड थी और प्रोटेस्ट का डे भी उन्होंने जानबूझ के उसी तरफ रखा था। एक्चुअली अभी टॉकिंग टू अ कलीग ऑफ माइन, ये हमारी डिस्कशन चल रही थी, इट इज वेरी सैड जिस तरह की पोलराइजेशन अमेरिका में हुई है, एंड व्हाट अमेरिका स्टूड फॉर एज अ होप फॉर द वर्ल्ड, एज दैट बास्टियन ऑफ डेमोक्रेसी, एज जो जिसको हम समझते रहे थ्रूआउट एक तरह, और उसने अपने आप को दुनिया में कि जी आर्बिट्रेटर है वो फाइनल, और मतलब वो मॉरल, मतलब जमहूर का चैंपियन है और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, आसमान है। तो वो इट इज वेरी सैड टू सी کہ وہ کس طرف جا رہا ہے کس طرف, اینڈ جس طرح یہ پولیرٹی ہے آپ نے اتنا پوائزن کر دیا ہے پولیٹیکل بیسس پہ لوگوں کو عوام کو کہ جی وہ اللہ بہتر جانے کس طرف جا رہا ہے, ڈونٹ وانٹ ٹو سے دوز ورڈز, لیکن یہ کنفرنٹیشن بہت پوری طرح ٹھیک ہے. اور سارے ٹرمپ کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پالیسی اس طرح چلی ہے جیسے اس نے سوچا تھا کہ ٹیرف سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور دنیا کے میرے قدموں میں لیٹ جائے گی اور پتہ نہیں.
سر لیٹی تو ہے سر, دیکھیں جی 70 کنٹریز آن دا ٹیبل گئے ہیں, آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہوگی. آپ کہتا ہے کہ 3 لبرل سینیٹرز ہیں جو کراس کر گئے ہیں ٹوورڈز کنزرویٹو. آپ کو پتا ہے کہ مارک کارنی صاحب اور بیہائنڈ دا سین ٹیرفز کے حوالے سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. ایک اور چیز جو میں ویکینڈ کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ ایک دو چیزیں انہوں نے کنسیڈر کی ہیں جس میں امریکہ کو اوپر ہینڈ دے رہا ہے کینیڈا.
وہ جب سامنے آئے گا جو بھی آئے گا تب پتا چلے گا. اس کے پھر مطابق چین بھی آ رہا تھا تو فلانا بھی آ رہا تھا اور میرے پاس 70 لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے کیا. دیکھیں آپ کا جو ابھی تک ایک چیز اناؤنس ہوئی ہے وہ آپ کا یو کے ساتھ ایک ڈیل اناؤنس ہوئی جو بھی وچ از ایبسلوٹلی اپ ان دی ایئر, ہیز کیا ایڈوانٹیج ملا انہوں نے اور اس پہ ٹیرف بھی اس لیے تھے کہ ڈائریکٹ بھی اس کے ساتھ کیا تھے, اس کے ساتھ تو آپ کا ٹریڈ سرپلس تھا. سو مطلب ایک یہ ساری ابھی تک باتیں ہیں, جب تک ڈاکیومنٹ سامنے آئے گا دیکھیں ایوری کنٹری مسٹ لک آفٹر اٹ. اینڈ آئی تھنک کینیڈا ہم نے جو اس چیز سے اور ہر ملک کو جو سیکھنا چاہیے جو ابھی تک نہیں سیکھ سکا کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ دے. اچھا تو کینیڈا کارنی پہ مجھے کم از کم یہ کانفیڈینس ہے اس کی باتیں سن کے. آج میں سن رہا تھا کارنی صاحب کو اور ٹرمپ کا جو G7 میٹنگ سے پہلے جو چھوٹا سا ہوا آیا تھا
کرنی بڑا ویری فائن مین.
ہاں تو انہوں نے جس طرح بڑا طریقے سے ڈیل کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے ٹرمپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنا دنیا دیکھی ہوئی ہے اس نے کہ جی بڑا جی آپ کی آپ بڑے ہیں اور آپ ہی کے کیا نام ہے گائیڈنس میں دنیا چل رہی تھی اور فلانا ہے اور ہم جی بالکل ہم ہر سبجیکٹ پہ آپ سے بات کریں گے, بالکل کریں گے. ہمیں جہاں پہ اپنا ایڈوانٹیج لگے گا وہاں دیں گے, جہاں پہ کوئی لے دے کر کے کوئی بہتر ہمارے لیے راستہ نکلتا ہے جب تک ہم نے بہتر آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈا ٹھیک ہے. ہم جو ہو سکتا ہے تھوڑی سی کمپرومائز بھی کر دیں لیکن ہمارا ڈائریکشن اب کلیئر ہونا چاہیے.
سر میرا یہاں پر ایک سوال آتا ہے, کہتے ہیں کیا پرابلم ہے چائنا کینیڈا کی کہ کینیڈا ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹریڈ وتھ چائنا. حالانکہ اس وقت اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ enemy is مائی فرینڈ, تو اگر آپ چائنا کے ساتھ کریں گے تو بیکاز امریکہ از ڈوئنگ ایوری پاسبل ایفرٹ ٹو بلاک چائنا. سو اگر دیکھیں جی کینولا آئل کی بات کر لیں اور جتنی چیزوں کی ہم چائنا کے اوپر ڈیپینڈ تو کرتے ہیں, وائی کینیڈا از ناٹ ویری اوپن اینڈ ٹاک فریلی ٹو ٹریڈ وتھ چائنا.
دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ جی یہ جو ایک کیپٹلزم جو ہے وہ ایک بیٹر ورڈ وہ دنیا کا اس وقت جو ایک سسٹم ہے وہ ہے. جو چائنا کا بلاک ہے وہ ایکچولی اس پورے سسٹم کو کے لیے تھریٹننگ ہے اور ڈسمینٹل کر دے. جو اسرائیل کو ہم کہہ رہے تھے کہ جی جو سپورٹ ہے مطلب وہ ویسٹرن ورلڈ سے وہ ظاہر چائنی ورلڈ سے تو نہیں ہے. تو ایشو یہ ہے کہ جس شفٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت ریڈیکل ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا گزارش کی تھی کہ کینیڈا الائنڈ ہے ہو رہا ہے زیادہ ویسٹ کے ساتھ, کنگ اینڈ ہز ارلیئر ڈومینین اینڈ دیٹ یورپ کائنڈ آف اے اسٹرکچر. بٹ اور پھر جب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ